संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 29 मार्च 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। आईसीजे का गाजा पट्टी में अकाल टालने के लिए इसराइल को अंतरिम कार्रवाई करने का आदेश। उधर गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग तेज। हेती में गैंग युद्ध के कारण उत्पन्न प्रलयकारी स्थिति का सामना करने के लिए तुरंत और साहसिक कार्रवाई पर जोर। दुनिया भर में लगभग 1 अरब आहार खुराकों के समतुल्य खाद्य सामग्री हो जाती है बर्बाद, जबकि 1/3 आबादी को नहीं मिल पाता भरपेट भोजन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के मद्देनजर इस पर मानव नियंत्रण जरूरी। इस विषय पर सुनिएगा एक विशेष इंटरव्यू शिमोना मोहन के साथ। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। और हाँ, मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN News। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में मानवीय सहायता आपूर्ति सुनिश्चित करने के इरादे से इसराइल से अंतरिम तौर पर कुछ कदम उठाने के लिए गुरुवार को एक आदेश जारी किया है। ICJ के आदेश में कहा गया है कि गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और अकाल व भुखमरी की दस्तक सुनाई दे रही है। इस पृष्ठभूमि में विश्व अदालत ने इसराइल को हर आवश्यक व कारगर कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से पूरे गाजा में सभी फिलिस्तीनियों को तत्काल बेरोकटोक बुनियादी सेवाएं व मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल को आदेश दिया है कि सड़क मार्ग के लिए सीमा चौकियों को खोला जाना होगा, साथ ही इसराइल को उसके सैन्य बलों को ऐसे कोई कृत्य करने से भी मना किया गया है जिनसे गाजा में फिलिस्तीनियों के अधिकारों का किसी तरह से कोई हनन हो। कोर्ट का निर्णय है कि इसराइल इन सभी कदमों पर 1 महीने के भीतर अपनी एक रिपोर्ट ICJ में दाखिल करे। इस बीच मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष समन्वयक टोर वेनेसलैंड ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा है,
The devastating conflict in Gaza has continued alongside daily violence in the occupied West Bank, and famine in the northern part of Gaza is imminent.
टोर वेनेसलैंड कह रहे थे कि गाजा में विनाशकारी युद्ध के साथ साथ काबिज पश्चिमी तट में भी दैनिक हिंसा जारी है। इसराइल द्वारा लगभग हर दिन मानवीय सहायता सामग्री को रोके जाने और मानवीय सहायता कर्मियों को बंदी बनाए जाने के साथ साथ अन्य बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। सहायता काफिलों पर हमले हो रहे हैं जिनके कारण जरूरतमंद लोगों तक सहायता सामग्री नहीं पहुँच पा रही है। गौरतलब है कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाला एक प्रस्ताव सोमवार को सुरक्षा परिषद में पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस प्रस्ताव को लागू किए जाने की अनिवार्यता पर जोर दिया है और कहा है कि इसमें कोई नाकामी अक्षम्य होगी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने हेती में गैंग युद्ध के कारण उत्पन्न प्रलयकारी स्थिति का सामना करने के लिए तुरंत और साहसिक कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, दंड मुक्ति, जर्जर सरकार व्यवस्था के साथ साथ जटिल गैंग युद्ध ने हेती में कानून के शासन को खत्म कर दिया है और सरकारी संस्थाओं को ठप होने के नजदीक पहुंचा दिया है। पिछले वर्ष गैंग युद्ध में हताहत होने वाले लोगों की संख्या में बहुत तेजी दर्ज की गई है। बीते वर्ष में लगभग 4,500 लोग मारे गए। इस वर्ष की पहली तिमाही में भी गैंग युद्ध के पीड़ितों की संख्या में तेज उछाल आया है और 22 मार्च तक लगभग 1,500 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधी गुट लोगों में दहशत फैलाने, उन्हें दंडित करने और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यौन हिंसा का भी प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में एक तरफ तो 1/3 मानव आबादी खाद्य असुरक्षा से जूझ रही है, यानी इतने लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, वहीं हर दिन लगभग 1 अरब आहार खुराकों के समतुल्य खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है।
यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन का कहना है कि खाद्य बर्बादी एक वैश्विक त्रासदी है। दुनिया भर में भोजन ऐसे समय में बर्बाद हो रहा है जब लाखों करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वजह से न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण की चुनौतियाँ भी गहरी हो जाती हैं। यूएन एजेंसी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 बताती है कि 2022 में लगभग 1 अरब टन भोजन बर्बाद हो गया। खाद्य सामग्री की अधिकांश बर्बादी घर परिवारों में होती है, जिसे करीब 63.1 करोड़ टन आंका गया है। यह कुल भोजन बर्बादी का 60% हिस्सा है। औसतन हर व्यक्ति एक वर्ष में 79 किलोग्राम भोजन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व में भूख से प्रभावित हर व्यक्ति के लिए हर दिन 1.3 आहार खुराकों के समतुल्य है। भोजन बर्बादी की चुनौती महज संपन्न देशों तक सीमित नहीं है और इस विषय में धनी व निर्धन देशों के बीच की दूरी कम हो रही है। शहरी और ग्रामीण आबादियों में ये तस्वीर अलग है। मध्य आय वाले देशों में ग्रामीण इलाकों में भोजन की बर्बादी कम होती है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO ने आगाह किया है कि अच्छे जीवन की चाह में अपने देशों से अन्य देशों के लिए निकलने वाले लगभग 30% प्रवासियों की मौत हिंसक टकराव के कारण हो जाती है। IMO की एक नई रिपोर्ट में पिछले एक दशक के दौरान प्रवासियों की मौतों और उनके लापता होने के बारे में चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
रिपोर्ट दर्शाती है कि अपनी जान गंवाने वाले एक तिहाई से अधिक प्रवासी उन देशों से हैं जो या तो हिंसक टकराव से ग्रस्त हैं या फिर जहां विशाल शरणार्थी आबादी रह रही है। इस रिपोर्ट में उन खतरों के प्रति आगाह किया गया है जिनका सामना हिंसाग्रस्त इलाकों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों को करना पड़ता है। 2023 अब तक का सर्वाधिक जानलेवा साल साबित हुआ है और 8,500 प्रवासियों ने अपनी जान गंवाई। करीब 60% मौतें लोगों के डूबने से हुई। जिन प्रवासियों की मौत की पुष्टि हुई उनमें से 2/3 से अधिक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे उनके परिवारों और समुदायों को अपने प्रियजन के बारे में सूचना नहीं मिल पाने की पीड़ा से जूझना पड़ता है। भूमध्य सागर मार्ग के जरिए सफर तय करने वाले प्रवासियों की संख्या इस वर्ष अब तक 16,500 है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा लगभग 27,000 था। यात्रा करने वाले प्रवासियों की संख्या में गिरावट के बावजूद अब तक 956 प्रवासियों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि करीब पिछले साल जितनी ही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल व्यापक क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है, विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए। मगर युद्ध क्षेत्र व हथियार प्रणालियों में AI टेक्नोलॉजी के उपयोग को मानव देखरेख के दायरे में लाया जाना बहुत जरूरी है। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण शोध संस्थान में एसोसिएट रिसर्चर शिमोना मोहन का, जिन्होंने सचिन गौड़ के साथ एक बातचीत में बताया कि AI प्रौद्योगिकी के सैन्यकरण या वेपनाइजेशन से क्या तात्पर्य है।
जो स्टेटस है AI डेवलपमेंट का, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सिविलियन स्पेस में AI की इनोवेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन सेम चीजें और उससे ज्यादा बेहतर चीजें भी मिलिट्री AI में भी देखी जा रही हैं, जैसे कि अनक्रूड व्हीकल्स हम देखते हैं, अनक्रूड एरियल व्हीकल्स हो गए या अनक्रूड ग्राउंड व्हीकल्स हो गए, अनक्रूड मरीन व्हीकल्स हो गए। तो ये अनक्रूड व्हीकल्स बेसिकली उस प्रकार के वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसके लिए किसी इंसान को ना उस वेपन पे होना होता है, ना उस वेपन को देखना होता है, ना उसे कंट्रोल करना होता है। ड्रोन हो या कुछ भी हो, वो अपने आप से टारगेट कर सकता है और अपने आप से टारगेट को एंगेज भी कर सकता है। उसके पीछे भी जो हम मिलिट्री साइड पे देखते हैं, जैसे कि सिस्टम्स हैं, जैसे कि लॉजिस्टिकल सिस्टम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, उसमें भी AI इतना ज्यादा आजकल यूज हो रहा है कि ह्यूमन ओवरसाइट नहीं है उन चीजों की। यानी कि एक कोई इंसान नहीं है जो जाके देख सकता है कि अच्छा ये ठीक चल रहा है, ये नहीं ठीक चल रहा है, इसको ठीक करना होगा। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हम बायसेस के लिए बातें करते हैं या गलत इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोसेसिंग की बातें करते हैं, वो सब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या कौन से सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि ये जो चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सके, उन्हें दूर कर सके।
इस फील्ड में परेशानी ये है कि जैसे ही आपको समझ आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उस दौरान वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ही बदल जाती है। अगर आपको 2019 में समझ आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो 2024 तक आते हुए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पूरी बदल चुकी है। आजकल हम चैट जीपीटी की काफी बात करते हैं, चैट जीपीटी 2022 से पहले किसी को पता भी नहीं था क्या है। तो इसलिए अब थोड़ा अप्रोच डिफरेंट हो रहा है। अब हम यूएन में ये बातें चल रही है कि शायद हमें डेफिनेशन से आगे जाना चाहिए, शायद हमें इस टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शायद हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी चाहिए और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फिर ये डिसाइड करना चाहिए कि हम इसको कैसे पॉलिसी के अंदर लेके आएंगे।
शिमोना मोहन के साथ इस बातचीत का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर सुना जा सकता है। पता है news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।